नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ द अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारत के एपिसोड 19 में, अभिमन्यु एंड द चक्रव्यूह। तो दोस्तों, अभिमन्यु का नाम सुनने पर हम सभी के मन में एक ही इंसिडेंट याद आता है, और वो है चक्रव्यूह में कैसे अभिमन्यु अकेले अंदर चले जाते हैं और सारे कौरव लोग मिलके अनफेयर तरीके से उसको मार देते हैं। तो एक तो अभिमन्यु से रिलेटेड ये कहानी है जो हमें सभी लोगों को पता है, लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को अभिमन्यु से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने कम सुनी होंगी या फिर नहीं सुनी होंगी। कुछ कहानियां जो अभिमन्यु के पिछले जन्म से रिलेटेड है और कुछ ऐसी घटनाएं जो चक्रव्यूह को रचने वक्त हुई थी। तो इससे पहले कि हम उन कहानियों पे जाएं, एक मोटा मोटी रफ स्केच अभिमन्यु के बारे में कि वो कौन थे। तो अभिमन्यु के पिता हैं अर्जुन और उनकी माँ का नाम है सुभद्रा। सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन लगती है, तो इस नाते कृष्ण भगवान जो हैं वो अभिमन्यु के मामा लगते हैं। अब अभिमन्यु का जितना भी ट्रेनिंग है बचपन का, वो सब कृष्ण जी के गाइडेंस के अंडर में हुआ है, और इसीलिए कहते हैं कि कम एज होने के बावजूद वो बहुत बड़े योद्धा से अकेले भिड़ सकते थे। तो ये एक मोटा मोटी कैरेक्टर स्केच है। अब ये सुनने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि अब कृष्ण जो भगवान हैं उनको सब कुछ पता है और अभिमन्यु उनका खुद का भांजा भी है, ये सब जानते हुए भी उन्होंने अभिमन्यु की मदद क्यों नहीं की? क्यों इस तरीके से उसको एक दर्दनाक मौत मिलता है जहाँ पे कि सारे कौरव मिल के एक बच्चे को अनफेयर तरीके से मारते हैं? अब इस सवाल के दो आंसर्स हैं। एक आंसर तो अभिमन्यु के जन्म से रिलेटेड है, और दूसरा लॉजिक ये है जिसमें कि ऐसा कहा गया है कि कृष्ण ने जानबूझ के वहाँ पे मदद नहीं की या फिर अभिमन्यु को नहीं बचाया। तो इससे पहले कि हम इस आंसर के दूसरे वाले पार्ट के बारे में कुछ और जानें, चलिए मैं आपको अभिमन्यु के पिछले जन्म से रिलेटेड कुछ कहानियां सुनाता हूँ, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि अभिमन्यु की मृत्यु इतने कम एज में क्यों हो जाती है। वैसे आपको बता दूं कि अभिमन्यु जब मरे थे उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। तो इस कहानी के अनुसार होता यूं है कि उस टाइम पे पृथ्वी पे बहुत पापी ऐसे सब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अब ऊपर से जितने भी भगवान हैं वो देख रहे हैं कि अभी पाप को कम नहीं किया गया तो फिर ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए विष्णु जी वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार लेके मनुष्य के रूप में पैदा लूँगा और फिर पापियों को मैं ख़त्म करूँगा और अधर्म को हटाऊँगा। अब इस बात पे ब्रह्मा जी बाकी जितने भी देवताएँ हैं, जितने भी देवलोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग भी विष्णु जी को हेल्प करने के लिए वो भी इंसान के रूप में पृथ्वी में जन्म ले और कृष्ण भगवान को वो लोग मदद करें सब पाप को मिटाने के लिए। अब यही जब डिस्कशन चल रहा था तो उसमें जो चंद्रदेव हैं उनसे भी कहा जाता है कि आप अपने बेटे को भेजें। चंद्रदेव अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अब उनको अपने बेटे से अलग रहना मतलब ये मंजूर ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये अच्छे रीज़न के लिए, अच्छे कॉज के लिए, वो भी खुद विष्णु जी अवतार ले रहे थे तो उनको कन्विंस किया गया। तो वो एक कंडीशन पे तैयार होते हैं कि ठीक है, मेरा बेटा इंसान के रूप में अवतरित होगा, लेकिन ये सिर्फ 16 साल के लिए ही मैं इससे अलग रह सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं इससे अलग नहीं रहूँगा। तो अगर ये 16 साल के लिए पृथ्वी पे जन्म लेगा और रहेगा तो ही मैं इसको वहां भेज सकता हूं। तो ब्रह्मा जी इस चीज़ पे मान जाते हैं कि ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अभिमन्यु जो है वो असल में चंद्रदेव के बेटे के वो फॉर्म है और उनको सिर्फ 16 साल के लिए ही पृथ्वी पे लाइफ मिला था कि आपको 16 साल ही होगा और उसके बाद आप वापस अपने पिता के पास चले जाओगे। तो ये एक रीज़न है जिसके अनुसार अभिमन्यु का एज कम था। ये तो एक कहानी है। अब दूसरी कहानी के अनुसार अभिमन्यु जो है वो पिछले जन्म में एक असुर था जिसका नाम था अभिकासुर, और ये तब की कहानी है जब कृष्ण अपने मामा को मार देते हैं, मतलब कंस को मार देते हैं। अब कंस के बहुत सारे मित्र थे जो असुर के कैटेगरी में भी थे, उसी में ये अभिकासुर भी था। तो कंस के मरने की खबर जब अभिकासुर को लगता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो कृष्ण को मार के बदला लेना चाहता है। अब कृष्ण तो भगवान है, इनको पता चल जाता है अभिकासुर के बारे में और उसके इंटेंशन के बारे में, तो ये अपनी शक्ति से अभिका सुर को एक कीड़े में बदल देते हैं और उसको एक डब्बे में बंद करके रख देते हैं और वो डब्बा वो अपने पास ही रखते हैं। तो एक दिन ऐसे ही सुभद्रा कृष्ण के रूम में आ जाती है और रूम में उस टाइम पे कृष्ण नहीं होते हैं, तो वो देखती है कि वो डब्बा वहाँ रखा हुआ है। तो वो जैसे ही वो डब्बा ओपन करती है तो कहते हैं कि वो जो कीड़ा है जो असल में अभिकासुर है वो सुभद्रा के गर्भ में चला जाता है और फिर वो बाद में अभिमन्यु के रूप में पैदा लेता है। और इसीलिए कहते हैं कि शायद कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु जो है वो असल में असुर का रूप है और इसका मरना ज़रूरी है और इसीलिए वो मदद नहीं करते हैं। तो ये तो दूसरी कहानी है। अब इसी लाइन्स पे एक और कहानी है जिसके अनुसार क्या होता है कि जब कंस मर जाता है तो कंस के मरने की खबर उनके ससुर को भी पहुंचता है। अब उनके ससुर हैं जरासंध, और जरासंध बहुत पावरफुल राजा माने जाते थे, मतलब ऐसा था कि उनको हराना मुश्किल था, ऑलमोस्ट वो सब राजाओं को हरा चुके थे कृष्ण के अलावा। तो जरासंध को जब ये पता चलता है कि कृष्ण ने उनके दामाद को मार दिया है, मतलब कंस को मार दिया है, तो वो कृष्ण पे अटैक करते हैं मारने के लिए। और कहते हैं कि जरासंध ने टोटल 17 टाइम्स मतलब 17 बार मथुरा पे अटैक किया था कृष्ण पे, उसको मारने के लिए हराने के लिए, लेकिन हर एक बार वो हार जाते थे। तो 17 बार मतलब फेल होने के बाद जरासंध क्या करते हैं, अपने एक फ्रेंड को जाके बुलाते हैं कृष्ण के अगेंस्ट में। अब इनके जो फ्रेंड हैं उनका नाम है कालयवन। अब कालयवन एक ऋषि मुनि के बेटे हैं और उस ऋषि मुनि को शिवजी का वरदान मिला था जिसके तहत ये कालयवन पैदा हुआ था। अब कालयवन को वरदान ये था कि उसको कोई भी हरा नहीं सकता है या कोई भी उसको मार नहीं सकता है। कहीं कहीं पे मेंशन है कि कोई चंद्रवंशी या सूर्यवंशी इसको मार नहीं सकता। तो ये कालयवन को लेके आता है कृष्ण के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए। अब कालयवन आके कृष्ण जी को ये चैलेंज करते हैं कि आओ लड़ने के लिए। अब कृष्ण देखते हैं कि उनकी जो सेना है 17 बार लगातार लड़ाई होने के बाद बहुत थक गई है या फिर बहुत कम लोग बचे हैं, ऊपर से अभी एक साथ दो दो राज्य के सेना से लड़ना बहुत मुश्किल है, तो वो अकेले जाते हैं कालयवन से लड़ने के लिए। अब वो अकेले दोनों रणभूमि में एक साथ खड़े हैं ये लड़ाई करने के लिए, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है कृष्ण क्या करते हैं, वो रणभूमि छोड़ के वो भागने लग जाते हैं। अब वो जैसे भाग रहे हैं कालयवन उसके पीछे पीछे भाग रहा है, तो कृष्ण भाग के वहां से एक गुफा में जाके छिप जाते हैं। अब इस गुफा में एक आदमी सो रहा होता है, मतलब वो असल में एक योद्धा है जिनका नाम है मुचुकुंद। अब मुचुकुंद बहुत हजारों साल से उस गुफा में सोए हुए हैं। मुचुकुंद के बारे में कहा जाता था कि ये देवताओं को लड़ाई में हेल्प करते थे, ये इंद्र के तरफ से ये जाते थे लड़ने के लिए असुर लोगों को मारने के लिए, और ये त्रेता युग से सोए हुए थे। तो ये जो कि इतना लड़ाई करके थक चुके थे, इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे आराम की ज़रूरत है, तो आप मुझे सोने का वरदान दो और मुझे कोई भी अगर डिस्टर्ब करे तो मैं उठते के साथ मेरी नज़र जिस पे पड़े वो भस्म हो जाए। तो ये उसको वरदान मिला हुआ था। अब शायद से कृष्ण जी को ये बात पता था, तो वो उस गुफा में जाते हैं, देखते हैं मुचुकुंद सोया हुआ है, तो मुचुकुंद के ऊपर वो एक अपना चादर बिछा के पत्थर के पीछे जाके छिप जाते हैं। अब कालयवन पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है, वो देखता है कि कोई वहाँ पे चादर ओढ़ के लेटा हुआ है, उसे लगता है कि ये तो कृष्ण ही हो सकता है, तो वो लात मार के उठाने लग जाता है। अब इसी चक्कर में क्या होता है कि मुचुकुंद का नींद खुल जाता है, जैसे ही नींद खुलता है वो उठता है और उनको वरदान था ही कि भाई जो डिस्टर्ब करेगा उसको देखते के साथ ही वो भस्म हो जाएगा, तो वो देखता है कालयवन को और उसी वरदान के तहत कालयवन वहीं भस्म होके मर जाता है। अब कालयवन का जो शरीर है वो सिर्फ भस्म होता है, लेकिन उसका आत्मा जो है वो जैसे ही गुफा से बाहर निकल रहा था कृष्ण उसके आत्मा को पकड़ लेते हैं और अपने कपड़े में गांठ में उसको बंदी बना लेते हैं। तो ये हो जाता है कि कृष्ण गुफा से वापस आ जाते हैं, ये कालयवन का आत्मा को अपना गांठ में बांध के बंदी बना के वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन सुभद्रा आती है कृष्ण भगवान के रूम पे, वो देखती है कि उनके भाई का कपड़ा वहाँ पड़ा हुआ और उसमें गांठ लगा हुआ है, तो उनको लगता है कि ये गांठ क्यों लगा हुआ है। वो अब जैसा होता है कि हम लोग घर पे देखते हैं कि गांठ लगा हुआ है तो उसको खोल देते हैं, तो वो वही सोच के भाई का अपना वो कपड़े का गांठ खोलती है। तो उसी टाइम पे जो आत्मा कालयवन का जो आत्मा था वो गांठ से निकल के सुभद्रा के गर्भ में जाके छिप जाता है फिर से, और यही बाद में अभिमन्यु के रूप में पैदा लेता है। तो ये तीन अलग अलग कहानियाँ थी अभिमन्यु के जन्म से रिलेटेड। अच्छा दोस्तों, मैं आपको कृष्ण जी का एक बड़ा ही मजेदार नाम बताता हूँ जो कि इस इंसिडेंट के बाद पड़ता है और ये बहुत फेमस नाम भी हुआ था, और वो उनका नाम है रणछोड़। तो कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता था क्योंकि वो रणभूमि छोड़ के भागे थे, हालांकि वो वहां पे अपना दिमाग लगाए थे उसको हराने के लिए। तो खैर, उनको रणछोड़ कहा जाता है और उनके जो भक्त हैं उनको रणछोड़ दास कहा जाता है, क्योंकि जो दास होते हैं वो स्वामी भक्त होते हैं, तो इसीलिए तो रणछोड़ कृष्ण हुए और रणछोड़ दास जो है वो कृष्ण के भक्त हुए। तो ये एक नाम है जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कहानियां सुनी अभिमन्यु के जन्म से रिलेटेड, जिसमें कि पता चल गया कि भाई उसका कम एज क्यों था या फिर वो क्यों जल्दी मारा गया। बट इसके अलावा एक पार्ट ये भी है जहां पे कि ऐसा कहा गया है कि कृष्ण ने जानबूझ के अभिमन्यु की मदद नहीं की ताकि अर्जुन पे उसका असर हो और वो पूरे फुल फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अर्जुन उस टाइम पे फिर आधे मन से ही लड़ाई कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में जब भी लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे अर्जुन आधे मन से इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनके मन में डाउट था कि ये चचेरे भाई हैं, ये गुरु हैं, ये दादाजी हैं, ये उनके खुद के रिलेशन वाले लोग हैं, उस पे ये किस तरीके से तीर चला सकते हैं, उनको कैसे मार सकते हैं, और इसी चक्कर में वो फुल फ्लेज में लड़ाई नहीं कर रहे थे। अब कृष्ण इस बात को समझ रहे थे कि अगर अभिमन्यु और मर जाता है तो उसके बाद अर्जुन गुस्से में अपने दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसको ये सही गलत, चचेरा भाई, गुरु, ये सारी बातें कुछ नहीं दिखेंगी और फिर वो एक अलग मोड पे चला जाएगा। और ये सोच के कृष्ण भगवान अभिमन्यु को जब मार रहे होते हैं वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग मार रहे थे उसी को मारने के लिए अर्जुन के मन में डाउट था, वहां पे दुर्योधन जो चचेरा भाई था, गुरु थे द्रोणाचार्य। तो खैर, वो इंसिडेंट होने के बाद अर्जुन सही में एकदम दूसरे मोड पे आ जाते हैं और वो अकेले ही ऑलमोस्ट आधी सेना को वो खत्म कर देते हैं कौरवों की। तो ये भी एक रीजन था कृष्ण के अभिमन्यु को नहीं बचाने के पीछे। अब दोस्तों, मैं उस चक्रव्यूह के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जिसमें कि अभिमन्यु अंदर जाते हैं और फिर उसमें उसकी मौत हो जाती है। तो चक्रव्यूह असल में क्या था कि ये एक फॉर्मेशन होता है जहाँ पे कि सैनिकों को एक स्पेसिफिक तरीके से खड़ा किया जाता है और उसमें हर एक लेवल होता है कि एक लेवल पे एक योद्धा, उससे ज़्यादा जो बलशाली है वो सेकंड लेवल पे, उस तरह से थर्ड लेवल पे, और एकदम लास्ट में जो सबसे इन लोगों का जो सबसे स्ट्रांगेस्ट वॉरियर होता है वो सबसे लास्ट में होता है। और इस चक्रव्यूह को तोड़ना सबके बस की बात नहीं थी। पूरे महाभारत में सिर्फ 5 लोग थे जिनको ये टेक्निक पता था कि आप कैसे अंदर जा सकते हो और किस तरीके से आप बाहर आ सकते हो। अभी 5 लोग में एक कृष्ण भगवान थे, एक अर्जुन थे, एक प्रद्युमन थे, एक द्रोणाचार्य थे और एक अभिमन्यु। अब अभिमन्यु के बारे में कहा जाता है कि अभिमन्यु जब अपनी माँ के गर्भ में थे, पेट में जब थे, तो अर्जुन उस रात कहानी सुना रहे हैं कि सुभद्रा को सुनाते हैं कि किस तरीके से एक चक्रव्यूह को भेदा जाता है, किस तरीके से आप तोड़ के अंदर जाते हैं। अब वो ये कहानी ये टेक्निक बता रहे हैं तो आधे में सुभद्रा को नींद आ जाती है और सुभद्रा सो जाती है, तो अभिमन्यु वो आधा पार्ट ही सुन पाते हैं कि कैसे अंदर जाते हैं। अब इस बारे में एक कहानी ये भी है कि कृष्ण जानबूझ के उस टाइम पे इंटरफेयर करते हैं जिस टाइम पे अर्जुन ये टेक्निक सुभद्रा को बता रहे हैं और अर्जुन को वहां से लेके चले जाते हैं जानबूझ के, और फिर बहुत लेट होता है जब ये आते हैं अर्जुन, तब तक सुभद्रा सो चुकी होती है, तो इसके कारण भी अभिमन्यु सिर्फ हाफ पार्ट ही सुन पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा मानना था कि जो विद्या आपको मिली है आप अपने बिना गुरु के परमिशन से किसी और को बांट नहीं सकते हो। चक्रव्यूह फॉर्मेशन का जो विद्या है वो बहुत स्पेशल विद्या था जो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया था। अब अर्जुन के लिए ये राइट नहीं था कि वो अपनी बीवी को या किसी और को बिना परमिशन के वो बताए, और इसी चीज़ के लिए, इस चीज़ से रोकने के लिए कृष्ण उसको वहाँ से लेके चले जाते हैं। तो खैर, तो कहानी का मतलब ये है कि अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में आधा टेक्निक सीख लेता है और उसको बाहर निकलने का पता नहीं होता है। अभी इधर द्रोणाचार्य क्या करते हैं कि लड़ाई में वो लोग प्लान करते हैं कि एक चक्रव्यूह रचा जाएगा और बाद में युधिष्ठिर को वो लोग चैलेंज करेंगे। तो वो चक्रव्यूह असल में युधिष्ठिर के लिए था, अभिमन्यु के लिए नहीं था। युधिष्ठिर को चैलेंज करेंगे अंदर आने के लिए और इनको पता था कि कृष्ण और अर्जुन अगर इनके साथ में नहीं है तो ये लोग चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएंगे और फिर युधिष्ठिर को ये बंदी बना लेंगे। युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्लान इसलिए था क्योंकि युधिष्ठिर पांडवों के हेड थे और अगर वो बंदी बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि पांडव हार जाएंगे अगर उनके जो हेड है उसी को अगर आपने बंदी बना लिया था। तो ये प्लान था और इस प्लान के हिसाब से जो लड़ाई का जो 13th डे था, 13वां दिन जो था, उसको प्लान किया गया था कि इस दिन चक्रव्यूह रच के युधिष्ठिर को चैलेंज किया जाएगा। और इसको प्लान में लाने के लिए पहले से ही कृष्ण और अर्जुन को एक अलग लड़ाई में कौरव फंसा देते हैं और वो लड़ाई होते 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 वो खिंच जाता है कुरुक्षेत्र से कहीं दूसरी ओर, ताकि जो 13वां दिन है वहां पे ना तो कृष्ण हो ना तो अर्जुन हो। अब प्लान के तहत चक्रव्यूह रचा जाता है और युधिष्ठिर को चैलेंज करते हैं। अब युधिष्ठिर को इस बात का टेंशन है कि क्योंकि उनमें से किसी को भी चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर जाना उनको पता नहीं होता है। लेकिन तभी अभिमन्यु वो खुद से प्रपोज करते हैं कि नहीं, मुझे पता है, मैंने सुना है अपने पिता को, तो मुझे वो टेक्निक पता है कि आप अंदर कैसे जा सकते हो, लेकिन बाहर निकलने में मुझे आप लोगों की मदद लगेगी। तो युधिष्ठिर नहीं चाहते हुए भी बोल देते हैं कि ठीक है। फिर वो भीम को, नकुल और सहदेव को साथ में भेजते हैं कि तुम लोग साथ में रहना इसको गार्ड करके, और फिर ये अंदर जाएगा और फिर इसको बाहर निकालने में मदद करना। तो ये पूरा प्लान था। अब इस पूरे प्लान में एक ट्विस्ट था जरासंध का। अभी जरासंध से कहानी ये है कि जरासंध बहुत पहले जब पांडव लोग जंगल में थे, वो एक बार द्रौपदी को किडनैप किया था और उस टाइम पे सारा पांडव लोग मिलके जरासंध को पकड़ के बहुत पीटा उठा था और उसको बहुत बेइज्जत किया था। मतलब भीम तो उसके सिर से पूरा बाल नोच दिया था हाथ से और सिर्फ 5 गुच्छा बाल का रखा था। तो इस चीज से इतना वो बेइज्जत फील होता है और कि वो तपस्या करता है और ये वरदान मांगता है शंकर भगवान से कि एक दिन के लिए मुझे सारे पांडवों पे मुझे भारी पड़ना है। तो शिव जी वरदान दे देते हैं कि ठीक है, लेकिन ये अर्जुन पे ये लागू नहीं होगा। अर्जुन को छोड़ के बाकी सारे पांडवों पे तुम भारी पड़ सकते हो और वो दिन तुम चुन सकोगे। अब जरासंध ये 13वां दिन ही चुनता है जिस दिन की इसको पांडवों के ऊपर भारी पड़ना है। अब जब लड़ाई शुरू होती है तो अभिमन्यु को तो टेक्निक पता होता है, तो अभिमन्यु अपना टेक्निक से वो लेवल पार करते हुए वो चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। लेकिन चूंकि उसी दिन जरासंध को मिला वरदान इतना पावरफुल था कि वो अकेले भीम, नकुल, सहदेव सबको अकेले रोक देता है और किसी को अंदर नहीं आने देता है। अब इधर अभिमन्यु अकेला पड़ जाता है। अंदर जाते जाते वो क्या करता है, बहुत सारे योद्धा को मार देता है, जिसमें कर्ण के भाई होते हैं, दुर्योधन का बेटा होता है, दुशासन का बेटा होता है, और एक एक लेवल पे एक एक को सबको हराते जाता है। जैसे एक जगह कर्ण को हराया, उसके बाद द्रोणाचार्य को हराया, फिर उसे दुर्योधन को हराया, तो एक एक करके वो हराता जाता था और धीरे धीरे वो और अंदर की ओर पहुंचता जाता था। तो लास्ट में जब वो सेंटर में पहुंच जाता है, वहां पे सब कौरव लोग उसको घेर लेते हैं और दुर्योधन और दुशासन के मन में तो गुस्सा था ही कि उसके बेटे को इसने मारा है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अकेले अकेले इसको मारना मुश्किल होगा, तो सब मिलके इसको मारते हैं। और फिर वो इंसिडेंट होता है कि सब लोग इसको घेर के फिर अभिमन्यु को वहां पे मार देते हैं। तो ये कहानी था चक्रव्यूह का कि ये कैसे रचा गया था, किस तरीके से प्लानिंग हुआ था, किस तरीके से अर्जुन को और कृष्ण को दूर किया गया था। जरासंध उसी दिन अपने वरदान को यूज में भी लाता है जिससे कि कोई उसका मदद नहीं कर पाए। तो ये ओवरऑल पूरा अभिमन्यु के पिछले जन्म की कहानी थी और जो चक्रव्यूह रचा गया था, जो कि असल में युधिष्ठिर के लिए था, लेकिन बाद में वो मौत का फंदा बन जाता है अभिमन्यु के लिए। तो ये एक पूरी कहानी थी अभिमन्यु से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों कुछ सुनाओ यार अब बाकी प्लेटफॉर्म्स के अलावा कुकू FM पे भी अवेलेबल है। वहाँ आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ आप कमेंट्स भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ सुनाओ यार के फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे या यूट्यूब चैनल पे अपने सुझाव मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुँचाए हुए। इस कठिन समय में एक दूसरे की मदद करते रहें और इंसानियत को जगाए रखें। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में, ओनली विथ अमित रवानी।